युग के कमरे में इस वक्त कृषा के साथ साथ ध्रुव, तारा और अर्जुन भी खड़े हुए थे। कृषा से मिलने के बाद युग को बेहतर लग रहा था। वहीं युग को ठीक देखकर ध्रुव और तारा भी वापस वहां से जाने को हुए। इस बीच ध्रुव के मुंह से ये निकल गया था कि जब वो वहां पर पहुंचा तब तारा अर्जुन के साथ थी और उसकी तबीयत खराब थी। तारा अपने बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थी। ऐसे में कृषा ने अर्जुन को वहीं पर बुला लिया था। तारा की हेल्थ अपडेट देते हुए अर्जुन ने उसकी प्रेगनेंसी अनाउंस की, जिसे सुनकर वहां खामोशी छा गई थी। प्रेग्नेंट? कृषा ने हैरानी से पूछा। लेकिन उनकी शादी को तो 2 ही दिन हुए हैं, फिर शादी हुई भी अचानक से है। फिर कृषा को बोलने के लिए शब्द ठीक से तब तक नहीं मिल रहे थे और वो बीच बीच में हड़बड़ाते हुए बोल रही थी। युग ने आंखें घुमाई और बोला, डोंट एक्ट स्टूपिड कृष, कोई कैसे प्रेग्नेंट होता है? तुम कोई बच्ची तो हो नहीं, तुम्हारे ऑलरेडी खुद के 2 बच्चे हैं। हाँ, लेकिन दोनों क्लोज कब आए होंगे? शादी से पहले तो तारा हमारे घर में होस्टेज थी, या उससे पहले? कृषा ने उलझन भरे स्वर में कहा। अगर मैं ठीक से कैलकुलेट करूं तो ये उस वक्त की बात होगी जब ध्रुव और मेहर की शादी हो रही थी, युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ध्रुव के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, एम आई राइट बेबी डेविल? कम ऑन डैड, एम्बैरस करना बंद कीजिए, ध्रुव ने डांट पीसते हुए कहा। और ये झूठ बोल रही है, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ था? युग जल्दी से बोला। मैंने ऐसा कब कहा कि कुछ नहीं हुआ था? पर जवाब देते हुए ध्रुव रुक गया था और उसने अपनी मुठ्ठियाँ कसकर बांध ली थीं। तुम मुझे झूठी कैसे कह सकते हो? तारा ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। और मैं प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो सकती हूँ? तुम नशे में थे, तुम्हें कुछ ठीक से याद भी नहीं है। इसका मतलब तारा सच बोल रही है और वो सच में प्रेग्नेंट है। तुम्हें इस तरह अपनी वाइफ पर सवाल नहीं उठाने चाहिए ध्रुव, और खासकर उस स्थिति में जब तुम्हें ठीक से कुछ याद ना हो। वैसे मैंने बैचलर्स पार्टी में सिर्फ 1 ड्रिंक दी थी और तुमने उसके बाद काफ़ी सारी ड्रिंक की थीं। उसके बाद तुम सीधे घर आए थे, युग बोला। वो काफ़ी कैलकुलेटिव अंदाज में बात कर रहा था और उसकी बातें यही जाहिर कर रही थीं कि युग इस बारे में पहले से जानता था। आपको सब पता है? ध्रुव हैरानी से बोला। अफकोर्स पता है, मेरे घर में क्या होता है मुझसे छुपा हुआ थोड़ी ना है, युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। जिस तरह से युग अपनी बातों से ध्रुव को परेशान कर रहा था, उससे ध्रुव को जरूर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अर्जुन और तारा मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। इससे पहले कि ध्रुव चिढ़कर कुछ और कहता, अर्जुन उसके पास आया और उसके गले लग गया था। वो उसे थपथपाते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस, कुछ ज्यादा ही जल्दी प्रमोशन करवा दिया तुमने हमारा। वैसे तुम्हें तारा का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो काफी वीक है और ऐसे टाइम में लड़कियां इमोशनली काफी जल्दी ट्रिगर हो जाती हैं। ध्रुव अर्जुन से अलग हुआ और नजरें फेरते हुए बोला, मुझे टाइम दीजिए, मैं इस तरह की किसी न्यूज के लिए तैयार नहीं था। नहीं थे तो अब हो जाओ, ऐसा करो, तारा को अपने साथ ले जाओ, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, कृषा ने सुझाव दिया और फिर जबरदस्ती उन दोनों को कमरे से बाहर भेज दिया था। अर्जुन भी कृषा और युग को अकेले छोड़कर वहां से चला गया था। उनके जाते ही कृषा ने मुस्कुराते हुए युग की तरफ देखकर कहा, यकीन नहीं हो रहा ये इतनी जल्दी हो रहा है, कल की सी बात लगती है ना, जब इसी हॉस्पिटल में अचानक तुम्हारे मामू ने मेरे प्रेग्नेंट होने की बात कही थी और हिस्ट्री रिपीट्स, ध्रुव के ही मामू ने उसे उसके पिता बनने की न्यूज़ सुनाई। युग ज्यादा कुछ नहीं बोला और उसने हल्के से सिर हिला दिया था। वो कृषा की तरफ देख रहा था जो इस न्यूज के बाद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। कृषा भी चुप थी और उसी दिन के बारे में सोच रही थी जब उसके अचानक बेहोश होने पर युग बुरी तरह घबरा गया था। वो यहाँ शांतनु से मिलने के लिए आई थी और शांतनु की खराब मेंटल सिचुएशन ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। युग ने अपना हाथ बढ़ाकर कृषा के हाथ को पकड़ा और हल्का मुस्कुराकर कहा, ध्रुव का आना सच में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। हाँ, पर तुमने उसकी जिंदगी के शुरुआती 5 साल मिस कर दिए थे, कृषा ने हल्की मायूसी के साथ कहा। लेकिन आगे के 20 साल मैंने उसे संभाला है, और याशी को भी। याशी का जिक्र होते ही युग के चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। आज अगर युग हॉस्पिटल में था तो उसकी एकमात्र वजह मान्या थी, वो याशी को टारगेट करने का सोच रही थी। युग ने जल्दी से इधर उधर देखा, याशी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। याशी कहाँ है कृष? डोंट टेल मी कि मेरे चक्कर में तुम लोग इतने लापरवाह हो गए कि उसे घर पर अकेला छोड़ दिया, युग ने जल्दी से पूछा। मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा, और वो कोई खिलौना नहीं है जो मैं उसे छोड़कर भूल जाऊं। शाम को अलीजा उसे अपने साथ घर लेकर गई थी, कृषा ने बताया। इसी के साथ युग ने राहत की सांस ली। भले ही फिलहाल याशी सुरक्षित थी, लेकिन युग को फिर से उसकी सिक्योरिटी इतनी कड़ी करनी थी कि कोई उस तक पहुंच तक न पाए। वहीं कृषा के जबरदस्ती बाहर निकालने पर ध्रुव और तारा कमरे से बाहर आ गए थे। रात का समय होने की वजह से वेटिंग एरिया में कोई नहीं था। ध्रुव बिल्कुल खामोश था। उसने तारा के चेहरे की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, देखो, मैंने ठीक से रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पर खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करना है, खासकर उस हालत में जब मैं खुद तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए भी सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, तारा ने जवाब दिया।
मैं नशे में था पर तुम तो नहीं थी ना। ठीक है, उस मोमेंट में वो सब हो गया पर बाद में तुम सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सकती थी, ध्रुव ने हल्के चिढ़न भरे अंदाज में कहा। तारा ने एक पल ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा। पहले जहां वो उस पर गुस्सा कर रहा था और उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, वहीं अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस दिखाई दे रही थी। साथ ही उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो तारा की प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं था। तारा ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मैं टर्मिनेट करवा लूंगी। सोचना भी मत, ध्रुव जल्दी से बोला और उसने तारा का हाथ पकड़ लिया था। उसने तारा की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है और रात काफी हो गई है, मामू को बोलकर किसी प्राइवेट रूम का अरेंजमेंट कर देता हूँ, तुम्हें सोना चाहिए। मैं ठीक हूँ, तारा ने जल्दी से कहा। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, मैंने ये कहा है कि तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है और यहाँ इतनी देर खड़े रहने से थक जाओगी, तुम्हारे प्रॉपर टेस्ट भी होने बाकी हैं, तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना। ध्रुव की आवाज में तारा के लिए फिक्र छुपी हुई थी और तारा भी हैरान थी कि उसकी प्रेगनेंसी न्यूज सुनकर ध्रुव का बर्ताव कितना बदल गया था। अपनी बातों से तारा को हर्ट करना तो दूर की बात है, वो उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। तारा कुछ कह पाती उससे पहले ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास की बेंच पर बिठा दिया था। मैं मामू से रूम की बात करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठी रहो और लौटते टाइम तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी ले आऊंगा, ध्रुव ने तारा के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा और तुरंत मुड़कर जाने लगा। तारा उसे जाते हुए देख रही थी। जब वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया तब तारा ने अपना सिर दीवार से टिका लिया था। ध्रुव ये न्यूज सुनकर हड़बड़ा जरूर गया था, लेकिन उसके बर्ताव से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। उल्टा जिस तरह से वो तारा की परवाह कर रहा था, तारा ने हमेशा उसके साथ ऐसी ही लाइफ बिताने का सपना देखा था।
दूसरी तरफ उदयपुर में हो रही माफिया मीटिंग के दौरान जब प्रतिभा ने ये कहा कि उसके पास देने के लिए और भी इन्फॉर्मेशन है, तो सब आंखों में उत्सुकता लिए प्रतिभा की तरफ देखने लगे। पहले ही प्रतिभा ने उन्हें याशी के बारे में बताकर युग के कमजोरी का खुलासा कर दिया था। जब उसने एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन का नाम लिया तो वे सब उसके बोलने का इंतजार करने लगे। प्रतिभा ने अभय की तरफ देखकर कहा, हम सिर्फ युगराना को इसी तरह चोट नहीं पहुंचा सकते हैं बल्कि उसकी सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं। माफिया की दुनिया में सिर्फ 7 नहीं बल्कि 10 पड़ाव हैं और वे 3 पड़ाव बहुत मायने रखते हैं, वे अभी तक युग के पास नहीं हैं। मैंने उन लोगों की बातें सुनी थीं, उन 3 पड़ावों की चाबी उसके बेटे की पत्नी है, तारा मल्होत्रा। उस लड़की की शादी तभी ध्रुव से हुई है क्योंकि वो उन्हें उन 3 पड़ावों तक पहुँचा सकती है। प्रतिभा की बात सुनकर उन सब लोगों को सच में एक बड़ा सा झटका लगा था और सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। ये खबर सच में याशी की मौजूदगी से ज्यादा बड़ी खबर थी। पूरी बात जानने के बाद अभय के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो प्रतिभा से बोला, तुमने सच में हमारा बहुत बड़ा काम किया है और इसके बदले हम तुम्हें युगराना की जान अपने हाथों से लेने का मौका देंगे। और सच कहूं तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रतिभा ने सख्त आवाज में कहा। उसकी आंखें युग के प्रति नफरत से भर गई थीं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह युग ने बेरहमी से मान्या को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। वो खुद घायल था लेकिन फिर भी उसने जरा भी नरमी नहीं दिखाई, और रही सही कसर अलीजा ने पूरी कर दी थी। फिर भी हम युगराना की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी बच्ची को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें वे 7 पड़ाव भी मिल जाएंगे। हमें नहीं लगता कि युगराना के लिए अपनी बेटी से ज्यादा कीमती वे 7 पड़ाव होंगे, और जब हमें पूरी तरह माफिया की दुनिया मिल जाएगी तब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की जान लेंगे। अभय ने अपना प्लान उनके सामने रखा। हर कोई उससे सहमत था। मीटिंग वहीं पर खत्म हो चुकी थी और उस मीटिंग को जिस मकसद से रखा गया था वो भी पूरा हो गया था। आज उन्हें सिर्फ युग की कमजोरी के बारे में ही नहीं बल्कि माफिया की दुनिया के एक बड़े सीक्रेट के बारे में पता चला था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ध्रुव ने तारा के लिए कमरे का अरेंजमेंट कर दिया था। वो पेशेंट की फैमिली के रहने के लिए बनाए गए प्राइवेट VIP रूम में तारा को लेकर वहां आ गया था और साथ ही उसने अर्जुन को भी बुला लिया था। मामू, आप इनिशियल चेकअप दोबारा कीजिए और जो भी प्रॉपर टेस्ट है उनके बारे में लिख दीजिए, मैं कल करवा लूंगा, और प्लीज मुझे इसकी हेल्थ अपडेट अच्छे से चाहिए, ध्रुव बोला। अर्जुन ने उसकी बात पर सिर हिला दिया था। उसने तारा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। ध्रुव ने भी ये नोटिस किया था। कहीं ना कहीं ध्रुव उसकी इस उदासी का कारण समझ रहा था और वो इसके पीछे का कारण खुद को मान रहा था। उसे यही लग रहा था कि तारा इस वजह से उदास है क्योंकि फ्यूचर में वो दोनों अलग होने वाले थे और साथ ही उनका रिश्ता भी बहुत बुरा था। ध्रुव इस बारे में तारा से बात करना चाहता था लेकिन तभी तारा ने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाने को कुछ ला सकते हो? इस टाइम ध्रुव ने हल्की हैरानी के साथ कहा क्योंकि अब तो हॉस्पिटल का कैंटीन एरिया भी बंद हो गया था, लेकिन फिर भी वो तारा को निराश नहीं करना चाहता था। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आता हूँ।
ध्रुव जल्दी से वहां से निकल गया और जाने से पहले उसने अर्जुन को तारा का ख्याल रखने के लिए कहा। जैसे ही ध्रुव वहां से गया, तारा ने अर्जुन की तरफ देखा। आपने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया डॉक्टर सिंघानिया, वो मुझसे और नफरत करने लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तारा ने भारी आवाज में कहा और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। कुछ देर पहले जब तारा अर्जुन के केबिन में बैठी थी, तब तारा का ही आइडिया था कि वो फेक प्रेगनेंसी प्लान करके ध्रुव का दिल जीतने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी सख्त दिल क्यों न हो, अपने होने वाले बच्चे की माँ से वो कभी नफरत नहीं करेगा। तब अर्जुन ने तारा को यही समझाया था कि ऐसा करके वो ध्रुव का दिल ही दुखाएगी। कहीं ना कहीं तारा ने भी प्लान को ड्रॉप कर दिया था, पर उसे समझ नहीं आया कि अचानक अर्जुन को क्या हो गया था जो उसने सबके सामने तारा की प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी थी। ओके, तो तारा प्रेग्नेंट नहीं है और सच में ध्रुव को पता चला तो ना सिर्फ उसका दिल टूट जाएगा बल्कि वो तारा से और नफरत करने लगेगा। देखते हैं तारा कब तक इस झूठ के सहारे टिक पाती है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अब तो मैं ज्यादा गैप भी नहीं रख रही हूँ, तो आप भी अच्छा रिस्पॉन्स किया करो।